हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम कामयया यथोत्तम श्लोक जन श्रयारतिः पदाभिवंदने से इस तीन श्लोकों में इसका अन्वय है और वैष्णव जगत में बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है ये। सुखदेव गोस्वामी गंगा के तट पर परीक्षित की उस दिव्य सभा में भगवान के शुद्ध महाभागवत राजर्षि अम्बरीश के भक्ति का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं श्रीमद् भागवत की महिमा अतुलनीय अद्वितीय है और क्यों है, क्योंकि इसमें भगवान के विशुद्ध भक्तों के पवित्र चरित्र है। अम्बरीश चरित्र महाभक्तिदायक और वैष्णवों के लिए उत्साहवर्धक है। महाराज परीक्षित भी आश्चर्य में रहकर प्रश्न पूछ दिए थे कि अम्बरीश में ऐसी कौन सी भक्ति थी कि दुर्वासा के श्राप को उन्होंने दुर्जय श्राप को खंडित कर दिया, दुर्वासा को भी जिसने परास्त कर दिया, ऐसी क्या भक्ति थी। और इन प्रश्नों को सुनकर सुखदेव गोस्वामी का हृदय अम्बरीश के पवित्र चरित्र से भर गए और बड़े भाव से अम्बरीश जी के भक्ति का निरूपण इन श्लोकों में किया जा रहा है। प्रभुपाद जी ने कई जगह पर इन श्लोकों को कोटेशन दिया है, विशेषकर में भगवद गीता में दूसरा अध्याय जो गीता का सार है उसमें तो दो बार इन श्लोकों को कोटेशन दिया। तो एक श्लोक को आप बड़े ध्यान से सुने और गाए, लेकिन इसके आगे दो प्रसिद्ध श्लोक है उनको भी हमारे पीछे, इसे बोर्ड पर नहीं है लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे तो भगवत कृपा से वैष्णव कृपा से जरूर बोल पाएंगे, ऐसे कई भक्तों को कंठस्थ भी होगा। सवे मन कृष्ण पदारविंदयो वंचासि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम् क्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्यारसनात दर्पिते पिते पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्येन तु कामकाम्यया यथोत्तम श्लोक जनश्रयारतिः इसे भागवत के इन दिव्य श्लोकों को अगर वास्तव में भाव से गाया जाए तो समाधि भी फीकी रह जाती है, इतना आनंद आता है इसमें। और उसमें भी भक्तों के संग प्रभुपाद जी की महाकरुणा है मानव समाज के ऊपर कि इन्होंने ये दिव्य भागवत सत्र अपने स्थानों इस्कान के स्थानों में दिया है। और अगर हम इनको चूक रहे हैं तो वास्तव में अपना लॉस कर रहे हैं। बहुत ही सूक्ष्म बात है लेकिन इम्पोर्टेंट सीरियस बात। आइए श्लोकों के शब्दार्थ पर ध्यान देते हैं। वह भी बोलिए सह वह महाराज अम्बरीश वही निसंदेह मनः जिसका मन कृष्ण पदारविंदयो कृष्ण के दोनों चरणों कमलों पर स्थिर वचांसी जिसके शब्द वैकुंठ गुण अनुवर्णने कृष्ण का गुणगान करते हैं करो दोनों हाथों से हरे मंदिर मार्जनादिषु हरि मंदिर की सफाई करने में श्रुतिं जिसका कान चकार संलग्न अच्युत कभी न गिरने वाले कृष्ण के विषय में सत कथा उदये, दिव्य कथाओं के श्रवण करने में, मुकुंद लिंगालय दर्शने, मुकुंद के अर्थ विग्रह, मंदिर तथा पवित्र धाम का दर्शन करने में, दृशो जिनकी दोनों आंखें तद्वृत्य कृष्ण के सेवकों के गात स्पर्श, शरीर का स्पर्श करने में, अंग संगमम उनके शरीर का स्पर्श, घ्राणम च तथा उनकी घ्राणेन्द्रिया नासिका, तत्पाद उनके चरणों के, सरोज कमल के फूल की, सौरभे सुगंधि में, श्रीमत तुलस्या तुलसी दलों का, रसानाम उनकी जीभ, तत् अर्पिते भगवान को चढ़ाए गए प्रसाद का, और पादों उनके दोनों पांव, हरे भगवान के क्षेत्र मंदिर या वृंदावन एवं द्वारिका धाम जैसे पवित्र स्थान, पद अनुसर्पणे उन स्थानों तक चलते हुए, शिरह सिर ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण के, पद अभिवंदने चरण कमलों को नमस्कार करने में, कामम च तथा उनकी इच्छाए, दास्ये सेवक की भांति, न नहीं तू निस्संदेह काम काम्यया इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से युक्त, यथा जिस प्रकार उत्तम श्लोक जन आश्रया प्रहलाद जैसे भक्त की शरण लेते हैं, रति ही आसक्ति। अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस अभिचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, महाराज अम्बरीश सदैव अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में, अपने शब्दों को भगवान के गुणगान करने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर झाड़ने बुहारने में तथा अपने कानों को कृष्ण द्वारा या कृष्ण के विषय में कहे गए शब्दों को सुनने में लगाते थे। वे अपनी आंखों को कृष्ण के अर्च विग्रह, कृष्ण के मंदिर तथा उनके दिव्य धाम स्थानों को यथा मथुरा वृंदावन को देखने में लगाते थे। वे अपने स्पर्श इंद्रियों को भगवत भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने में लगाते थे, अपने घ्राणेन्द्रियों को भगवान पर चढ़ाई गई तुलसी की सुगंध को सूंघने में लगाते थे, जीभ को भगवान के प्रसाद चखने में लगाते थे। उन्होंने अपने पैरों को पवित्र स्थानों तथा भगवत मंदिरों तक जाने में, अपने शिर को भगवान के समक्ष झुकाने में और अपनी इच्छाओं को 24 घंटों भगवान की सेवा करने में लगाया। निसंदेह महाराज अम्बरीश ने अपनी इंद्रिय तृप्ति के सभी कुछ को कभी नहीं चाहा, इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी कुछ भी नहीं चाहा। वे अपनी सारी इंद्रियों को भगवान के संबंधित भक्ति कार्यों में लगाए रहे, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने की और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतम मुक्त होने की यही विधि है। अनुवाद तो अभी तात्पर्य, अनुवाद की तात्पर्य जितना तात्पर्य भगवत गीता 7:1 भगवान कहते हैं, मया सक्त मना पार्थ योगम युज्यन महामदाश्रयः। इससे सूचित होता है कि मनुष्य को किसी भक्त के निर्देशन में या फिर सीधे भगवान के निर्देशन में भक्ति करनी चाहिए, किंतु गुरु के निर्देशन के बिना अपने आप को प्रशिक्षित कर पाना संभव नहीं है। अतएव श्रील रूप गोस्वामी के आदेश अनुसार भक्त का प्रथम कर्तव्य है कि कि वे प्रामाणिक गुरु की शरण स्वीकार करें और उसकी इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाए। भगवद्गीता 7:1 में भगवान 7:1 में भगवान कहते हैं, असंशयम समग्रम्मा यथा ज्ञास्यसि तत्श्रणुः। दूसरे शब्दों में यदि कोई भगवान को पूरी तरह समझना चाहता है तो उसे महाराज अम्बरीश के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करना चाहिए। कहा गया है ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। भक्ति का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश तथा अच्युत श्री कृष्ण की सेवा में इंद्रियों को लगाना। ये शब्द इन श्लोकों में प्रयुक्त है। अच्युत सत कथोदय ऋषिकेश पादाभिवंदने। अच्युत तथा ऋषिकेश शब्द भगवद्गीता में भी प्रयुक्त हुए है। भगवद्गीता में भगवद्गीता तो साक्षात कृष्ण द्वारा कही गई कृष्ण कथा है और श्रीमद् भागवत जो कृष्ण की कथा है, क्योंकि भागवत में वर्णित प्रत्येक कथा कृष्ण से संबंधित है। तो शास्त्रों का एवं भक्ति का सार स्वरूप यह श्लोक है। कोई कितना हो ज्ञानी ध्यानी तपस्वी बैरागी कुछ भी हो, लेकिन भगवत भक्ति हीनस्य, भगवान कृष्ण के चरणों में भक्ति नहीं है तो मंडनम लोकरंजनम, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं शास्त्रों के इन श्लोकों के द्वारा कि आत्मा चली जाने पर शरीर का श्रृंगार व्यर्थ है, केवल लोक मंडन दिखाने के लिए उसको लगाया जाता है तेल चंदन पुष्प आदि, लेकिन जिसमें आत्मा ही नहीं है, प्राणहीन काया अस्पृश्य एवं स्पर्श के बाद भी स्नान युक्त हो जाती है कि नहीं, तो फिर उनका श्रृंगार बेकार है। उसी तरह बिना भक्ति के कुछ भी हम कर रहे हैं तो श्रम हो जाएगा। इन शास्त्रों के सार को महाराज अम्बरीश ने पूरी तरह समझा है और इसीलिए अपने पूरी इंद्रियों को पूरे शरीर को भगवान की सेवा में लगाया है। ऐसे इसके आगे के श्लोकों में एक बड़ी सुंदर बात है हम भक्तों के लिए और पूरे मानव समाज के लिए सुखदेव जी मैसेज देते हैं अम्बरीश चरित्र से, एक संदेश देते हैं कि वासुदेवे भगवती तद भक्तेषु च साधुषु। महाराज अम्बरीश में इतनी शुद्ध भक्ति और भक्ति की सेवा में दृढ़ निष्ठा और उस सेवा निष्ठा में भाव रति कैसे प्राप्त हुई, प्रश्न हम चाहते हैं, यही चाहते हैं ना, हम भी भक्ति में निष्ठा चाहते हैं, सेवा में निष्ठा चाहते हैं और उस निष्ठा में भाव चाहते हैं, प्रेम से करना चाहते हैं। तो अम्बरीश की जैसे थी कैसे हुई, अम्बरीश महाराज में इस तरह उसका स्थिति अवस्था कैसे प्राप्त हुआ, इसका उत्तर आगे शुक जी ने बताया है कि वो वासुदेव कृष्ण में उनकी भक्ति थी। क्यों? क्योंकि उस वासुदेव कृष्ण के जो भक्त है या साधु है उनमें उनकी भक्ति थी। भक्त वैष्णव की कृपा से, वासुदेव कृष्ण के भक्तों की और उनके प्यारे वैष्णवों की कृपा से भगवान में भक्ति थी और भगवान कृष्ण में उनकी दृढ़ भक्ति थी। उसका फल यह हुआ कि पूरे विश्व के पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट है, सॉरी विश्व नहीं पृथ्वी के है ना, सप्त दीपवती मही, 7 दीपों वाली इन पूरे भूमि के वे एकमात्र स्वामी थे, फिर भी क्या मानते थे, लोस्ट वत् स्मृतः, जैसे माटी का एक ढेला हो। जैसे गीता जी में ठाकुर जी ने 12 अध्याय में ये मांग की है, जो मेरा प्रिय बनना चाहता है सम लोस्टेषु कांचन, वो सोना और मट्टी में सम होता है, क्योंकि दोनों है, यह है असत्य जगत की वस्तुएं है, नश्वर पदार्थ है, चिन्मयता से इनका कोई संबंध नहीं है, आत्म परमात्मा तत्व से इनका कोई संबंध नहीं, और जो प्रकृति के गुणों से पार है 14 अध्याय में, उसमें भी इस बात को ठाकुर भगवान ने गीता में कहा है कि जिसका चित्त वृत्ति त्रिगुण त्रिगुणातीत हो चुका है अर्जुन ने पूछा था के लिंगे त्रिगुणातीत, त्रिगुण त्रिगुणातीत पुरुष के क्या लक्षण है, तो उसमें भी भगवान ने बताया है कि जिसकी बुद्धि या जिसका चित्त इन रजस तमस सत्व से ऊपर उठ चुका है तो वह समलोष्टास्म कांचन है, वो सोना और मिट्टी में सम होता है, उनके लिए कोई महत्व नहीं रहता। यहां पर महाराज अम्बरीश के विषय में सुखदेव जी कहते हैं कि वासुदेव कृष्ण में भक्ति थी, क्यों? क्योंकि उनके भक्तों में उनकी भक्ति थी और वैष्णव भक्तों के कारण वासुदेव कृष्ण के प्रति दृढ़ भक्ति थी और उस भक्ति के प्रभाव वश वैराग्य की सीमा को पार कर चुके थे। भक्ति परेशानु भावो विरक्ति अन्यत्र च त्रिश एक काल, एकादश स्कंद भागवत। भगवान कृष्ण में भक्ति है, उसका आनुषंगिक फल यही हो जाता है कि संसार में, संसार के संबंधों में, संसार की नश्वर वस्तुओं में उनका कोई मोह नहीं रहता, वैराग्य हो जाता है, उसको कुछ भी नहीं समझता है भक्त, ये स्वाभाविक है। तो इसके लिए हम दो बात कहेंगे कि भाई वासुदेव कृष्ण में के भक्तों में भक्ति होने के कारण भगवान में भक्ति अविरत हो गई तिल धारावत, और उसके कारण संसार उसको लोष्ट व्रत, पूरे सप्तवती पृथ्वी सप्त दीपवती मही उसके लिए माटी का ढेला थी, कुछ महत्व नहीं था अम्बरीश जी के बुद्धि में इन पूरे साम्राज्य का। हाँ, चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु के मुख से प्रयाग निकला है कि वस्तुतः बुद्धि शुद्ध नहीं कृष्ण भक्ति बिना। ये बुद्धि में जो रजस तमस है, त्रिगुण की जो प्रभाव है, कृष्ण की भक्ति किए बिना बुद्धि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर जाएगी। सीधा बात, आपको एक श्लोक याद स्मरण कराते हैं, श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद 13वां अध्याय 4 नंबर का श्लोक, जिसमें वर्णन है 11, 13, 4, आगमो आप प्रजा देश काल कर्म जन्म च ध्यानम मंत्रो च संस्कारो दशे हेते गुण हेतव। 10 वस्तु का गुणों के अधीन होकर व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। आप जैसे आगम पढ़ोगे, आगम माने वेद पुराण शास्त्र, अगर वो रजोगुणी शास्त्र है और आप पढ़ रहे हो तो आप में रजस के ऊपर बुद्धि जा नहीं सकती। जैसे कुछ पुराण है ना, कुछ तमोगुणी पुराण है, कुछ रजोगुणी पुराण है, अब वो पढ़ने लिखने सुनने से बुद्धि कभी ऊपर जा नहीं सकती रजस तमस, जबकि ये परमहंस संहिता है भागवत, इनको पढ़ने वाले की बुद्धि सहज न चाहते हुए भी अनायास इस काम क्रोध लोभ से ऊपर उठ जाती है, रजस तमस से ऊपर उठ जाती है। जैसा शास्त्र पढ़ते हो आप, जिस जगह का आप जल पीते हो, प्रजा जिसका आप संग करते हो, स्थानम जिस स्थान में आप रहते हो, ये स्थान प्रजा पानी शास्त्र और कर्म और आपका जन्म, काल माने समय जैसा समय, और साथ में ध्यान जिसका आप करते हो कुछ उपासना, मंत्र जिस मंत्र का आप जप करते हो, इन सारों का गुणों के अंतर्गत आपकी चित्त वृत्ति या बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए भगवद गीता का जो आदेश अर्जुन को है कि त्रिगुणातीत हो जाओ, तीन तीनों गुणों से अर्जुन ऊपर उठो, तो इन तीनों गुणों से हमारी चेतना को बुद्धि को ऊपर उठाने के लिए सीधा उपाय है कि हम ऐसे त्रिगुणातीत शास्त्र का संग करें। पहली बात, मंत्र हो या आगम हो या स्थान हो या संग हो, ये जैसा होगा ऐसा ही चित्तवृत्ति रहेगा। इसीलिए भागवत 1:2:26 मुमुक्षवो घोर रूपा भूत्वा हितपति न, है ना, हित्वा भूतपति न थ नारायण कलाशांता भजंती य अनसूयव। जो मुमुक्षु है वो इन रजोगुणी तमोगुणी देवताओं की उपासना करते रहेंगे, और याद रखिए सत्वम विशुद्धम वसुदेव सद्धितम, वासुदेव से कृष्ण इन सत्वम मतलब त्रिगुणातीत सत्य है, विशुद्ध सत्व है, उनका मंत्र, उनकी लीला कथाएं, उनके मुख से निकली गीता, उनकी लीला कथा का ग्रंथ भागवत और उनके भक्तों का संग ही हमें रजस तमस से ऊपर उठाएगा। अदरवाइज नहीं तो आप कुछ भी चेतना से बुद्धि से काम क्रोध लोभ जाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा शास्त्र या ऐसा भगवान या ऐसा मंत्र या ऐसे व्यक्ति का संग नहीं है लोक के पास। जब तब प्रभुपाद जी ने जो कार्य किया है वो समझ में आता है कि उन्होंने विश्व को क्या दिया, भागवत दिया, कृष्ण दिया, जो सीधे आत्म स्तर पर लाता है व्यक्ति को, स्वरूप अवस्था को प्राप्त करा के भगवत धाम की ओर आत्मा को भेज देता है। ये भागवत या अर्च विग्रह या मंत्र जो भी है वो, क्योंकि त्रिगुणातीत वस्तु दी जा रही है, सीधी बात। तो ये चेतन चरितामृत से या भागवत से जो मैं बताया, इससे हम बुद्धि भक्तों को ये मैसेज मिलता है। और जैसे अमृत जी के चरित्र में ये सार्थक हो गया कि उनकी बुद्धि में वैराग्य हो, संसार उसको जीरो लग रहा था, कुछ महत्व नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि विष्णु उसके स्वार्थ हो गए थे। जिसके स्वार्थ भगवान हो जाते हैं तो संसार उसके लिए नते स्वार्थ गति में विष्णु दूरा से या बई अर्थ मानी में जो नहीं जानते अपने स्वार्थ भगवान को उनको दूरा दूसरे दूसरे संसारिक वस्तु में बुद्धि रहता, जो जान गए उनके लिए तो है नहीं। और ऐसा अवस्था कब हुआ? क्योंकि उन्होंने शुद्ध भक्तों का शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, सीधी बात है, कामना ही नष्ट हो जाएगी, है सीधे सी बात है। और इस तरह महाराज अम्बरीश को एक सूत्रात्मक रूप में सुखदेव जी ने बता दिया, उनकी भक्ति, भक्तों का संग, वासुदेव की भक्ति और उसके द्वारा संसार को माटी समझना। ऐसे महाराष्ट्र के एक भक्त हुए राका बांका, उनके जीवन में ये इस तरह का प्रसंग मिलता है कि राका और बांका पति पत्नी गृहस्थ थे, इतने गरीब थे, लकड़ियां काटकर एक रुपया कमाते थे चारा नहा ठाना उस समय, और उससे अपना पेट भरते थे, लेकिन विठल का भजन के अलावा कुछ नहीं करते थे। नामदेव ने, जो पंडरपुर में विठल के महाभक्त माने जाते नामदेव, उनके साथ विठल जी बात करते थे और विठल जी को नामदेव जी ने कंप्लेन किया कि राका बाका जैसे शुद्ध भक्त है और इतना वो परिश्रम उठा रहे हैं, आप क्या ठाकुर बने हुए हो? बोले हम देना चाहते हैं लेकिन वो ले तब ना, और इसलिए वो लकड़ियां काट के आ रहे थे। तो ऐसा इतिहास है कि सोना ठाकुर जी ने दे दिया, पहले तो लकड़ियां सब इकट्ठी कर दी, वो लकड़ी काट के इकट्ठा करते थे, उसको बेच के पैसा करके गुजरान चलाते थे। तो ठाकुर जी ने क्या किया, विठलनाथ ने सारी लकड़ियां इकट्ठा करके गड्ढा बना दिया, तो वो दोनों आए था कि इन दोनों को काटना ना पड़े। तो इन दोनों ने क्या सोचा, अरे ये तो किसी और की संपत्ति है, हम इसको ना छू सकते, हम स्वयं लकड़ी काटेंगे, देखे भगवान करे, लो देखो नामा, नामदेव को साथ में देखो नामा, ये ले नहीं रहे, मैं लकड़ी में खुद इकट्ठा किया हूं ताकि इनको मेहनत ना करना पड़े। लेकिन भक्त क्या सोचता है कि हम किसी की संपत्ति को देख छुएंगे नहीं, और स्वयं लकड़ी इकट्ठा करके भाड़ा उठा के आ रहे थे। तो आगे थोड़ा पति चल रहे थे, राका बांका जैसे, राका बांका उनकी पत्नी का नाम था और राका आदमी का नाम था पुरुष का। तो राका जी ने देखा तो भगवान विठल ने क्या किया, बड़े सोने का एक थैला रख दिया उधर, और पत्नी पीछे थी बांका जी, आगे तो देखा हो तो ढक दिया मिट्टी से। क्यों? क्योंकि पत्नी स्त्री का मन बिगड़ जाता है थोड़ा भाई सोना वगैरह देखकर। तो जब वो इकट्ठा कर रहे तो आ गए, आगे बोले क्या कर रहे हैं पतिदेव? तो देख ही ली थी, पकड़ ली, बोले कुछ नहीं है, सोना था तो तुम्हारा चित्त इस संपत्ति में न चला जाए, संपत्ति के द्वारा विषय भोग में न चला जाए और समय और चित्त वृत्ति भक्ति में से बिगड़ जाएगी, इसलिए मैं ढक रहा। तब बांका जी ने जो सूत्र दिया कि बाप रे क्या पतिदेव, मिट्टी से मिट्टी को क्यों ढक रहे हो, लो ये भी हमारे लिए मिट्टी है, लोष्टवत स्मृता, वो सोने को भी मिट्टी मानते हैं। क्योंकि मतलब मिट्टी मानना मतलब कोई वैल्यू नहीं है भगवत भक्ति के आगे। अब हमें सनातन गोस्वामी के चरित्र में है ना, वो पारस कचरे में पड़ा था, क्योंकि उसके पास जो असली धन है महामंत्र भगवत नाम प्रेम धन गोलोक का, तो फिर ये संसार का धन उसके लिए कुछ नहीं। बहुत भक्तों की ऐसी कथाएं हैं हमारे आचार्यों की, गौड़ीय आचार्यों की और अन्य संप्रदाय की भी, क्योंकि भगवत भक्ति का ये अपने आप में प्रभाव है कि संसार उसको विषयावे निवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्जन परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते, स्वाभाविक है ये अवस्था। तो ऐसे है उदाहरण, वेदास का भी उदाहरण है, मीराबाई के गुरु का, उनके लिए भगवान रख के गए, भगवान ने वो सत्संग करते थे ना, तो सत्संग के बाद प्रसाद देते थे, सब साधु आते थे सुनने के लिए, इतने गरीब थे कि प्रसाद देने की भी और मांगने जाते नहीं थे। तो भगवान साधु का रूप लेकर आए थे, और कहा कि देखिए प्रभु जी, ये एक छोटा सा पत्थर है, आप ले लीजिए। बोले पत्थर के क्या करेंगे हम, समय कहाँ है राम नाम जपने से हमको। बोले ये सामान्य पत्थर नहीं है, इसको आप लोखा से छुआ दोगे ना सोना हो जाएगा, ये पारस है। फिर जितना चाहे लोहा को सोना बनाओ, पैसा बढ़ाओ, फिर बांटो साधुओं में, प्रसाद बनाओ, जो करना है करो भंडारा। उन्होंने कहा कि हमको फजीहत में मत डालिए, माला छुड़वाने का ही काम कर रहे हो, ये न के न पके। वो साधु के रूप में थे। बोले ये हमारे कुछ काम का पारस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास गुरु जी के दास के दिया हुआ जो माला है, वो महामंत्र है, राम नाम है, उसके सामने हम किसी वस्तु को कुछ नहीं देखते हैं। इस माया को अपने पास रखिए, चलते बनिए, सत्संग में आते रहिए, ठीक है। तो भगवान ने कहा कैसा भगत है, मैं इसको देना चाहता। तो बोले काम करता हूं मैं, रूम में अंदर कुटिया थी छोटी, उसमें रख दिया कोने में। बोले आज नहीं मान रहा है, लेकिन प्रसाद की जरूरत तो पड़ेगी ना पैसे की, तब बुद्धि थोड़ा ठंडा होगा, तब वैराग थोड़ा उतर जाएगा ना, तो ले ही लेगा। छोड़ के चले गए। एक साल के बाद आए भगवान, बोले तुमको वो दिया था ना पत्थर, गरीबी ऐसी क्यों बनी हुई है। बोले कौन सा पत्थर, कौन है आप। बोले नहीं आया था मैं एक साल पहले आपके पास। अरे हमारे पास तो कितने साधु आते रहते, क्या क्या देते रहते हैं, हमको पता नहीं, याद नहीं रहता। अरे तुमको पत्थर दिया था एक बढ़िया सा चमकता हुआ। बोले कहाँ दिया था, तुमने नहीं लिया था तो हमने चुपड़ी में रख, जहां रखा वहां होगा, देख लीजिएगा। और वहां गए तो ऐसे ही पड़ा था, कोई ध्यान नहीं उसके ऊपर। ऐसी स्थिति है भक्तों की। तब भगवान जो पत्थर तो ले लिए, बोले ये लेने वाला है नहीं, तो शालिग्राम रखते थे, और शालिग्राम के आगे 5 सुवर्ण मोहर बड़ी बड़ी राजघराने वाली रख दी। बोले ये चलो सोना तो नहीं ले, पत्थर नहीं ले रहा, सोना तो देखेगा। तो रैदा जी सुबह सुबह, उनको पता नहीं था कि रूम में गया है साधु, और साधु के रूप में वही ठाकुर है, और ऐसा करके गए। तो उन्होंने जैसा ही देखा अंदर जाके, तो सोना मोहर पड़ी है, तो राम 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 करके कुटिया से बाहर आ गए। बोले इस माया से, संसार से बचने के लिए दो ही उपाय है, एक भगवान और दूसरे साधु। भगवान माने हर्ष विग्रह, शालिग्राम या ठाकुर जी, और दूसरे साधु, दो ही तो है। अब कैसे बचे, क्यों? क्योंकि भगवान है वो सोना उगल रहे हैं, और साधु है वो पारस दे रहे हैं। उल्टा वही लोग हमको माया में फंसा रहे, तो फिर बचाने की जिससे आशा थी, वही हमको माया में राम 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 इस कुटिया में निकल गए। बोलो कैसी ऐसी अवस्था चित्त की हो जाती है भक्त की। कितना सुंदर विचार है देखो, कि माया से बचने के लिए भगवान का एक आधार था, और भगवान के शुद्ध भक्तों का आधार था, तो उस भक्त साधु लोग आके पारस बनी दे रहे, और भगवान सोना उगल रहे। हम तो ऐसा ढूंढ रहे हैं ऐसा ठाकुर की, भाई सोना उगले थोड़ा, या कोई ऐसा भगत मिले जो कुछ हो जाए। लेकिन वो भी अशेष कामना रिधि माजे मोरा, भक्तिविनोद ठाकुर ने हमारा जीवन सदा पापे रत, उसमें एक अपना दैन्य है, लेकिन भक्तों के लिए दोष बताया है कि कामना का कभी अंत नहीं है, है ना। और भगवत गीता दूसरा अध्याय सार रूप में वहां पर है कि निष्प्रिय विहाय कामान पुमान चरती निष्प्रिय, कामनाओं को छोड़कर जो व्यक्ति निष्प्रिय इच्छा डिजायरलेस पर्सन, इच्छा को छोड़ा, अभी ये तो हो नहीं सकता। प्रभुपाद जी ने वहां तात्पर्य पढ़िए, कितना सुंदर बात लिखा है कि जीव बद्ध जीव चाहे तब भी कामना से मुक्त हो सकता ही नहीं। एक कामना पूरी नहीं होगी, दूसरी कामना चित्त में उठती है, कामना माने इच्छा, ये करूं ये करूं ये करूं विचार। तो जीव बद्ध जीव इच्छा शून्य निष्प्रिय या विहाय कामान कोई नहीं सकता। लेकिन तब क्या उपाय है, कृष्ण भावना भावित, कृष्ण की इच्छा में इच्छा मिला देना, ये इच्छा शून्यता है। हमारी इच्छा कभी समाप्त नहीं हुआ, लेकिन हमें कौन सी इच्छा करनी है, जो भगवान का चाहते हैं और जो वैष्णव गुरु, तो वो हमारी इसके अनुसार आप चल रहे हो, साधना कर रहे हो, सेवा, तो आप इच्छा आपकी होते हुए भी आप इच्छा शून्य हो, ऐसे तो नहीं हो नहीं पाओगे। इच्छा शून्य क्योंकि मन है वो इच्छा करता ही रहता है। इसीलिए चेतना में इस साधना को लाना है, सिद्धांत को लाना है, कि हमें कृष्ण की इच्छा, कृष्ण भावना भावित हो जाना, और उसके अनुकूल शास्त्र साधु गुरु के जो आदेश है उनकी इच्छा है, उसी अनुसार वही इच्छा को पूरा, और इस तरह चलना वो इच्छा शून्यता है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन कर्म नहीं होगा, कर्म का बंधन नहीं होगा, तो मुक्त कर्म करते हुए भी मुक्त हो सकते हैं गीता के अनुसार। यही बात अम्बरीश जी में थी। राजा थे, कोई बैरागी तो थे नहीं, पूरे राजर्षि थे, लेकिन उनकी साधना या उनकी भक्ति का भाव या भक्ति की सेवा में निष्ठा। सुखदेव जी गंगा तट पर इन ऋषियों ने की सभा में कहते हैं, सवे मना कृष्ण पदारविंदयो, स स शब्द का अर्थ स प्रसिद्ध अम्बरीश इति, जी तीनों लोकों में जिनको पूजते हैं वंदन करते हैं ऐसे राजा अम्बरीश, पवित्र चरित्र राजर्षि, मन अपने मन को कृष्ण पदारविंदयो, कृष्ण के चरणों में लगा दिए थे। जो भगवान चाहते हैं मन मना भवन, या प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं मया सक्त मना पार्थम योग्यम युज्यन मदाश्रय, जो भगवान इसमें अम्बरीश महाराज पास सार्थक हो चुके थे, इसमें सिद्ध कर लिए थे। और मन ही संसार में फंसाता है। अब एक प्रश्न है, हम भी चाहते हैं मन कृष्ण के चरणों में लगे। सरल और सीधा उपाय है कृष्ण के चरणों में मन लगाने का, कि कृष्ण के भक्तों के संग में उनकी कथाओं को सुना जाए। जितना चित्त में मन में कृष्ण कथामृत श्रवण कीर्तन करेंगे, क्योंकि श्रवण कीर्तन भक्ति जितनी तगड़ी होगी उतना ही तो स्मरण बेस्ट होगा ना। स्मरण माने मन को लगाना। और याद रखिए यमराज जी का वो बात जो यमदूतों को कहा था, चेतस न स्मरती तत् चरणारविंदे, जीवान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। हम यमराज कहते हैं कि जिनकी जीव भगवान के नामों का कीर्तन नहीं करती, तान आनय उसको पकड़ के लाओ इधर। तो उसमें है कि जिसका चित्त एक सिक्रित भगवान के चरणों पर नहीं लगा उनको इधर लाओ, इनका ट्रीटमेंट यहां के, उसके लिए हम पूरा डिपार्टमेंट खोले हैं। तो फिर उसमें पूछा ना यम के दूतों ने, टीका में वर्णन है कि जिसका चित लगा है उसको प्रणाम करके आना, नहीं तो मेरे लिए भी खतरा हो जाएगा। इसका कुछ तुम टच कर दिए ना, जिसका चित भगवान के चरणों में लगा है उनको तुम टच भी कर दिए ना, तो तुम्हारा तो गया काम, मेरा भी खतरा, मेरी पोजिशन भी हिल सकती है। इसलिए उनकी ओर देखना भी नहीं, उनको क्या करना, प्रणाम करके आ जाना। इसमें तुम्हारा हमारा सबका भला है। देखो भगवान के चरणों में जो चित्त लगा है, इसीलिए प्रत्येक भक्त ये चाहते हैं कि आप हमारे मन को कृष्ण के चरणों में हम लगाए, भगवान भी ये मांग करते हैं। और इसका उपाय है, हमें श्रवण कीर्तन बढ़िया से करना होगा, तब इसमें हम स्थिर हो। भगवान की लीला कथाओं को शास्त्र से सुनते पढ़ते रहेंगे तो एक दिन वो अवस्था आएगी कि हमारा मन भी भौरा जैसे कमल में रस लेता है, ऐसे ही कृष्ण के चरणों में लगा रहेगा। और ऐसे अम्बरीश जैसे भक्तों के चरित्र सुनना, इसी के में वो शक्ति भरा है कि इनके वो गुण या भाव वैष्णवों की कृपा से अगर हम समर्पण करें तो हमें भी वो आ सकता है। हमें भी ये अवस्था समर्पण करें तो उनकी कृपा से हमें भी ये साधना या ये स्थिति प्राप्त हो सकती है। वंचासी वैकुंठ गुणानुवर्ण ने अपने वाणी को कृष्ण के वैकुंठ माने भगवान उनके भक्त उसी में उनके लगाए थे पूरी तरह। और इसके ये जो अनुकूल बात है ना, ऐसा ही नेगेटिव रूप में सुखदेव जी ने दूसरे स्कंद में गाया है कि दार्दुरी का ये जो नहीं लगाते वो जीव की, जैसे यहाँ प्रत्येक इंद्रिय ठाकुर जी की सेवा में अम्बरीश लगाए और जो नहीं लगाता है तो उसका नेगेटिव उदाहरण सुखदेव जी ने दूसरे स्कंद में दिया है। क्या 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 अवस्था है, कान साहब के बिल है जो नहीं सुनते है, क्या था और जीव दादुर मेढक की है, कोई फायदा नहीं, जो दांव अपने मृत्यु को आमंत्रण मेढक देता है जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, बेकार है केवल। तो वहां पर नेगेटिव बात वर्णन किया गया है और यहाँ पर पॉजिटिव है कि क्या कैसे करना चाहिए। ऐसे सभी शास्त्रों का ये निचोड़ बताया जा रहा है। सूरदास जी ने भी अपने पद में गाया है, सोई रसना जो हरि गुण गाए, वही जीव जीव है जो भगवान के गुण गाए। नहीं तो बेकार है वो जीव। जिसकी जीवा हरिनाम संकीर्तन नहीं करती, भगवत गुणानुवाद नहीं करती, तो बेकार है। क्यों? क्योंकि वो कर्म के बंधन चढ़ाएगी एक पर एक। तार मध्य जीवाती लोभ मायासु, मुख ऐसा ही करता रहेगा दूसरे ही गुणानुवाद में, तो बस मति भ्रष्ट हो जाएगी और दुर्गति को आमंत्रण देना है अपने आप को। इसीलिए उससे बचने का उपाय है रूप गोस्वामी ने भक्ति रस उपदेशामृत में आप सभी जानते हैं जीवा और वाचो दोनों के ऊपर वेग को नियंत्रण करने को कहा है। भक्ति राज्य में प्रवेश करने का ये टिकट दिया है, ये पात्रता दी है, ये करेगा वो आगे बढ़ सकता है। करो हरे मंदिर मार्जन आदिशु, अपने हाथों से मंदिर की स्वयं मार्जन करते थे। ऐसे तो प्रसिद्ध ये श्लोक है, अपने आप में व्याख्या का विषय नहीं है, लेकिन कुछ कुछ शब्द है जैसे आदिशु। आदिशु से क्या तात्पर्य है? ऐसे तो समझ में आ रहा है कि हाथ को हरि के मंदिर को मार्जन करने में धोने में आदिशु। तो मैं टीका देख रहा था, चक्रधिपर लिखते आदिशु तद पात्रार्थ, अर्थात भगवान जिसमें खाते हैं वो थाली, जो भगवान भगवत संबंधी जो भी वस्तु है, विग्रह संबंधी मंदिर संबंधी, उस सबको मार्जन करना। नहीं कि केवल मंदिर का मार्जन कीजिए तो यही सेवा है, भगवान से जुड़े हुए जो वस्त्र है, गहने है, या खाने पीने की थाली है, कुछ जो भी है उससे संबंधित जो भी है, फिर वो किचन जहां है या भठाकुर जहां विराजते है या जहां उनके लोग भक्त लोग दर्शन की, सबको स्वयं अपने हाथ से मार्जन आदि करते थे। एक तो राजा थे, चाहे उतने नौकर चाकर रख सकते थे, लेकिन भगवत भक्ति में इतना अनुराग था सेवा में। इसी बात को प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में सीधी बात बता दी है। नारद पंचराग्र का प्रसिद्ध श्लोक, जिसको रूप गोस्वामी ने भी भक्ति रसामृत सिंधु में स्थान दिया है, और आप सभी जानते हैं, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, ये भक्ति है। सभी उपाधियों से विमुक्त होकर मैं ये हूं वो हूं, शारीरिक मानसिक जो भी उपाधियां हम पकड़ चुके हैं एक चुड़ैल की तरह, हमारे बुद्धि को जो ग्रस्त ली है, उससे मुक्त होकर हम कृष्ण के हैं, और कृष्ण के द्वारा दिया हुआ जो भी है मानस देह गेह जो किचु, और उसके अलावा भी जो किचु जो कुछ भी है अर्पिलो उसको अर्पण करना है, उनकी सेवा में लगा है। नारायण परायण काये न वाचा मन से इंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मनावा करोति यज्ञ सकलं परस्मै नारायणायेति, यही है भागवत धर्म। एकादश स्कंद में कवि जी ने निमि महाराज के समस्त, तो प्रभुपाद जी सूत्रात्मक रूप में बड़ा सुंदर तात्पर्य दे दिए हैं कि ऋषिकेश इस श्लोकों में भगवान के कई नाम आए हैं, जैसे कृष्ण पदारविंदयो, अंत में अच्युत सत्कथोदय, या ऋषि पादोस शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने। तो भगवान के कुछ नाम है, उनके पीछे उनके कुछ गुण भी छुपे हुए हैं, भगवान के नाम में उनके लीला या गुण कार्य है, उस अनुसार उसके नाम है। तो ऋषिक माने प्रभुपाद जी कहते हैं कि इंद्रिया, और ईश माने स्वामी, हमारी इंद्रियों के एकमात्र स्वामी ऋषिकेश है, भगवान कृष्ण है। ना भजिले ऋषिकेश जीवन हईल शेष हमारे गौड़ी आचार्य का बड़ा सूत्र अच्छा लगता है, बंगाली है, मेल होता है कुछ ना कुछ। तो जीवन ऐसे ही ऋषिकेश का भजन किए बिना बेकार गया, जब वही भक्ति है उनकी सेवा करना, यही सिद्धि साधना सब कुछ है, और ये नहीं हो रहा और जीवन ऐसे ही बेकार जा रहा है तो फालतू में जन्म गया, फिर पुनरअपि जननम मरणम चक्र रहेगा। तो इंद्रियों के आदि स्रोत भगवान है। आप मैत्रेय ऋषि के द्वारा सृष्टि लीला पढ़ेंगे तीसरे स्कंद में, तो सुंदर वर्णन है कि हमारे प्रत्येक इंद्रियों पर एक एक देवता विराजते हैं, और जैसे भुजाओं में इंद्र है, या मन में चंद्र सूर्य आंखों के देवता, ऐसे है ना सारे देवताओं का वर्णन, और वो देवता ही शक्ति देते हैं इंद्रियों के, लेकिन उनके पीछे भी आदि स्रोत भगवान है। वे न चाहे तो हमारी इंद्रिया इंस्ट्रूमेंट कान ऐसा का ऐसा रहता है, लेकिन अंदर जो करंट सुनने का होता है वो स्टॉप हो जाता है, मशीन डालने पर नहीं लगता, दिखने में तो इतना बड़ा कान दिखता है लेकिन सुनना बंद हो जाएगा। तो इंद्रियों के सप्लायर शक्ति देने वाले भगवान है। और रही बात देवताओं की पूजा की, तो दशम स्कंद में ब्रह्मा जी के प्रसंग में वर्णन है कि वास्तव में ब्रज के इन गोप बालकों ने या ब्रजवासियों ने सारे देवताओं को भी तृप्त कर लिया, क्योंकि सारे ब्रजवासी कृष्ण को प्रसन्न करने में संसिद्धि हरितोष्णम उसके मूर्तिमान रूप थे ब्रजवासी सभी, और कृष्ण को प्रसन्न करने में उनकी सेवा में ही लगे थे। जब कृष्ण की सेवा में शरीर लगा है तो शरीर को सब बीच वाले इनडायरेक्टली
जो हेल्पर है देवता डेमीगॉड्स वो, तो वे भी तो सार्थक हो गए। वो बोले हमको भी आपने ठाकुर जी की सेवा में लगाया, और इन शरीर से आप पाप करते हो, भोग करते हो, तो देवता भी नाराज होते हैं और आदि स्त्रोत भगवान तो नाराज होते ही होते हैं। तो बोले कि इन ब्रजवासियों के शरीर पर हम कुछ है शक्ति रूप में, तो हमारा जीवन भी धन्य और सार्थक कर दिया इन ब्रजवासियों ने। क्यों? क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न कर लिया, अपनी इंद्रियों से कृष्ण को संतुष्ट कर लिया, प्रसन्न कर लिया, तो हमको भी कृतार्थ कर लिया। और दुर्भाग्य वो लोग है जो भजन नहीं करते या शरीर को इंद्रियों को कृष्ण सेवा में नहीं लगाते, तो वो हमारा भी तिरस्कार कर रहे हैं, क्योंकि हम जो शक्ति दे रहे हैं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं विषय भोगों में। इसीलिए यहां पर अंतिम बात में ये सारे बातें सरल स्पष्ट है, किस इंद्रियों को किस सेवा में लगाया। लेकिन अंतिम लाइन है उत्तर पक्ष की इस श्लोक में, कामम च दास्ये न तु काम काम्यया। विश्वनाथ जी ने इस पर एक बड़ा सुंदर भाव दिया है इस शब्द पर, कि कामम च दास्ये, दास्ये अहम हरिर्दासम पुनः भवति। मैं जहां भी जन्म लू, जिस अवस्था में हूं, एक ही मांग है कि भगवान हरि का मैं दास बनू। जैसे परीक्षित जी ने गंगा तट पर पुनश्च भूयाद भगवत अनंते रतिम प्रसंगा तदाश्रयेषु, सब विप्र सुखदेव जी नहीं आए थे 19वां अध्याय फर्स्ट पहले कैंटो का आप देखे, तो उसमें परीक्षित जी की प्रार्थना है सुखदेव जी से आने से पूर्व, सारे ऋषि आ चुके थे, तो बोले हे सारे ब्राह्मणों, गंगा का आश्रय लिया हूं, अब हमें तक्षक का कोई डर नहीं है, आप विष्णु की गाथा गाइए। उसके बाद वाला 18वां श्लोक है शायद, तो उसमें वो कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हे वैष्णव, पुनश्च भूयात भगवत अनंते, मैंने इतना बुरा काम किया है, शायद मैं मोक्ष मेरा होगा नहीं, भगवत धाम में जाऊंगा नहीं, लेकिन कथनचित कर्म के कारण कहीं भी मैं जन्म लू, भगवत अनंते भगवान अनंत के प्रति मेरी भक्ति हो, और जो उनका आश्रय लिए है ऐसे वैष्णव में मेरी रति मति हो, ये हम आप लोगों से मांगते हैं। तांदेर चरण से ही भक्त सन्यवास, जन्म जन्म है यही अभिलाष। ध्रुव महाराज, भक्ति मोहु प्रवहतो त्वयि मे प्रसंगो भूयाद अनंत महता ममला शयाना। वो भी कृष्ण से विष्णु से कहते हैं कि भक्ति मेरी मोह बारंबार बढ़ती रहे, आपके शुद्ध भक्तों के संग में कथा और कीर्तन में मस्त रहो। प्रहलाद महाराज, विष्णु पुराण का श्लोक, नाथ योनि सहस्त्रेशु एशु एशु व्रजाम्यहम। हे विनरसिंह भगवान, मैं लाखों लाख योनियों में परिभ्रमण करूं मेरे कर्मों के कारण, हम आपसे ये नहीं मांगते, लेकिन जिस योनि में जाऊं तेषु तेषु अचला भक्ति, लेकिन आपके चरणों में मेरी अचल अहेतुकी और अप्रतिहता भक्ति बनी रहे, मैं आपका दास बना रहा हूं। वृत्रासुर, अयम हरे तव पादे कमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयम। जहां पर भी मैं जन्म लू आपके दासों के दासों का दास बनू। चैतन्य महाप्रभु, मम जन्मनी जन्मनिश कीट जन्म भक्ति विनोद ठाकुर यथा तुवा दास। कामम च दास्ये, मेरी एक ही कामना है कि मैं आपके दासों के दास बनूं, और साथ साथ में न तो काम काम्यया, काम काम्यया विषय भोगे इच्छा, इन विषय भोग में मेरी कभी वासना कामना न हो। कामम च दास्ये, मेरी इच्छा है कि मैं आपका दास के दास बनूं, और न तो काम काम्यया, और भोग भोगने की कभी भी रति भर भी हमें वो वासना न आए, और न थी, इसमें तो न थी, इनका वर्णन में सार ये बताया जा रहा है। क्यों? अब लास्ट बात, कि इस दास्य अवस्था को, विषय भोग के प्रति वैराग्य को, और भक्ति में प्रत्येक इंद्रियों को दृढ़ता पूर्वक और भाव निष्ठा से लगा दिए है, और इतने बड़े राजा या इतने बड़े भक्त थे कि दुर्वासा के श्राप को भी नीचे बिठा, दुर्वासा को भी झुकना पड़ा, भगवान भी जिसका गुणगान अपने मुख से वैकुंठ में आगे जलकर करेंगे दुर्वासा के सामने, वे अम्बरीश के विषय में ऐसी अवस्था क्यों है? यथा उत्तम श्लोक जनश्रयारति। क्यों? क्योंकि उत्तम श्लोक भगवान के जन आश्रया, उनका जो आश्रय लेने वाले जो जन यानी वैष्णव है उसमें उनकी रति थी। जिसकी भगवान के भक्तों में रति हो जाए, मति हो जाए, इनकी ये अवस्था हो जाए। सीधी बात है, गुरु परंपरा या वैष्णव जिसकी ऐसी अवस्था है, और अभी यहां पर प्रश्न आया ना कि उत्तम श्लोक के जन का आश्रय लिए थे, इसलिए इतनी रति थी, कौन कौन आदर्श थे? एक प्रश्न हमारे लिए हो सकता है कि अम्बरीश महाराज किसको अपना आदर्श मानते थे? तो टीका में लिखा गया है विश्वनाथ चक्रवर्ती के द्वारा, और प्रभुपाद जी के अंतिम तात्पर्य को मैं फिर से पढ़ता हूं आप लोगों की जानकारी के लिए, कि तात्पर्य नहीं, अपने इसको जो अनुवाद किया है, उत्तम श्लोक शब्दार्थ, उत्तम श्लोक जनाश्रया, जो प्रहलाद जैसे भक्त की शरण लेता। महाराज अम्बरीश अपने प्रहलाद महाराज को अपना आइडियल आदर्श मानते थे। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज में निष्काम भक्ति थी। वरम विनिष्वम भद्रम ते, नरसिंह भगवान ने कहा कि हे भद्र, हे भक्त, वरम भी मांगो, क्या चाहते हो? लेकिन प्रहलाद जी ने क्या कहा? यदि आशीष से आशा से सब भृत्य, सब वणिक नवे भृत्य, अगर कुछ आशाओं को लेकर भजन करता है वो तो बनिया है, भगत है ही कहां। तो आप कुछ मांगिए। बोले काम हृदय सरोवरम, मेरे हृदय में काम की लेश, कोई कुछ भी मांगने की इच्छा ही ना हो ऐसा वरदान दीजिए। तो निष्काम भक्तों में प्रहलाद का नाम राजर्षि होते हुए नंबर वन पोजीशन पर। महाराज अम्बरीश प्रहलाद को अपना आदर्श मानते थे, प्रभुपाद जी कहते, चक्रवर्तीपाद कहते, क्योंकि वो राजा थे। फिर भी स्मरण कितना तगड़ा था प्रहलाद महाराज की भक्ति का, आप सब वर्णन सुने पड़े हैं भागवत जी में। तो इस तरह राजा होते हुए भी बड़े बड़े ऋषियों को जो नीचे बैठा दे अपने भक्ति के कारण, भगवान को वश में करे, भगवान इनके आगे पीछे रहते हैं। आप तो आगे प्रसंग आप सबको पता है और बड़े विस्तार से सुनना पड़ना चाहिए। सुदर्शन चक्र को निमंत्रण नहीं दिया था अम्बरीश जी ने, और ना तो एक पैर पीछे चलाया था। दुकृत्या आई तो जहां थे वहीं खड़े रहे, न पदा चला नृप। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, एक पैर भी पीछे नहीं लिया, जैसे खड़े थे ऐसे खड़े थे, और ऐसे अहंकार से नहीं, अच्छा देख लेंगे, ऐसे नहीं खड़े थे। जिस भाव में धीर दैन्यवश खड़े थे कि बाप रे मेरा अपराध है, मैं इन ऋषि को बुलाया लेकिन पानी पी लिया, मैं क्या करूं व्रत, ऐसी गिल्टी फील, वो अपने आप को दैन्य, जबकि उनका कोई अपराध नहीं था, फिर भी उस दैन्य मुद्रा में खड़े थे और भगवान पर उतना विश्वास कि जैसे थे एक पैर पीछे नहीं है, हम आपको खाली ऐसे हाथ करें तो भी ऐसे हो जाएंगे, मारने की छोड़ ऐसे खाली करें झूठा तो हिल जाएंगे कि नहीं। लेकिन ये धीर का उत्तम उदाहरण है। धीर पुरुष न चला नहीं चलता है, न मुह्यति, और उद्देश्यामृत भी न धीर, अंतिम शब्द धीर, यहां पर भी अम्बरीश को धीर कहा है सुखदेव जी ने उस श्लोक में, कि न चला ऐसे ही खड़े रहे जिस मुद्रा में थे। भगवान ने सुदर्शन भेज दिया, उन्होंने प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ी हमारी रक्षा करिए, या देखो देखो हमको कैसे फील, कुछ नहीं, उल्टा अपने को अपराधी मानते। ऐसे भक्त के चरित्र भागवत में है, और इसको सुनने पढ़ने वाला इन विषय भोगों से या रजस तम से ऊपर उठ सकता है। और ऐसे जो भजन भक्ति करते ऐसे भक्तों का संग मिल जाए तो राधा गिरधारी की सबसे बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, कि ऐसे भक्तों के संग में भागवत मिल जाए। तो मैं तो इतना कम समय में इन श्लोकों को क्या कहा जाए, लेकिन भक्तों को चाहिए कि इन श्लोकों को याद रखे कम से कम, क्योंकि प्रभुपाद जी ने भगवद गीता के दूसरे अध्याय में दो बार इन श्लोकों को कोटेशन दिया, जहां इंद्रिय निग्रह की बात है, और स्थिति प्रज्ञ पुरुष के लक्षणों की बात है। तो पॉजिटिव में प्रभुपाद जी अम्बरीश महाराज को आइडियल मानते हुए हम भक्तों को यह मैसेज देते हैं। तो इस श्लोकों को याद करना, इसका चिंतन स्मरण करना, और सार्थकता यह है कि उसको हमारे जीवन में उतारना। नवदा भक्ति के अंग या 64 भक्ति के नियम जो चैतन्य चरितामृत रूप गोस्वामी को दिए गए हैं, उसका पूरा सार रूप में अम्बरीश महाराज ने अपने जीवन में, अपने चरित्र में इसको सार्थक किया। बहुत भगवान के भक्त है, लेकिन अम्बरीश जैसे भक्त, प्रहलाद जैसे भक्त शिरोमणि है, भक्तराज भक्त शिरोमणि। और ऐसे भक्तों का, ऐसे राजर्षियों का जब इतिहास पढ़ते हैं तो हमारा भी शुद्धि होता है, हमारा मन बुद्धि भी रजस तमस से मुक्त होकर पवित्र बनता है। तो धन्यवाद, आप भक्तों ने इतना धैर्य से सुना, और समय भी हो गया, तो ऐसे मन से भी गाने में भी अच्छा लगता है, और पसंद उसरों को भी सुनाए तो बहुत सरलता से है, ये कौन सा अंग कैसे लगाया, शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदन। मंदिर जाना चाहिए, पादो क्षेत्र या भगवान के धामों की यात्रा, प्रभुपाद जी यहाँ लेकर मथुरा जैसे पंच भक्ति में है,
श्रीमद तुलसा तुलसी दल को जीव पर रखना ठाकुर जी के सुगंध पुष्प को अच्युत की कथाओं में मन लगा रहे हैं। तो बड़ी उत्तम बात है, आप सभी भक्त लोग आशीर्वाद मांगिए प्रभुपाद से, अम्बरीश महाराज से, गिरधारी से, कि हमें भी शुद्ध करिए, पवित्र करिए और अपना सेवक बनाए रखिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। वंशा कल्पगर्भ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च परिदानं वैष्णवेभ्यो नमः। राधा गिरिधारी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा निताय गौर सुंदर की जय। निताय गौर प्रेमानंद।